त्रिलोक सार लेक्चर नंबर 16। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम श्रुतात्मने नमः। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वर्षायाणं, नमो लोए सौवसाऊणं। विन्दसिहामणि तिनुकलावरुणचरणनः किरणं, विमलयरणेमि चन्दं, त्रिभुवनचन्दं नमंसामि। आचार्य श्री नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती विरचित यह त्रिलोकसार नामक ग्रंथ है और उसकी हिंदी टीका हम पढ़ रहे हैं और अभी हम आए हैं पृष्ठ संख्या 65 पर। 65 अपनी यहाँ द्विरूप वर्गधारा की बात चल रही थी। द्विरूप वर्गधारा में दो रूप यानी दो संख्या, उसका जो वर्ग है 4, ये उसका पहला स्थान है और इसके आगे वर्ग का वर्ग का वर्ग करते जाओ तो पहले स्थान पर है 4, दूसरे पर है 16, तीसरे पर है 256, चौथे पर है 90 वगैरह। तो इसमें से बहुत कुछ आगे की संख्याएं भी उन्होंने बताई है, जैसे जो जघन्य परितानंत नाम की जो संख्या है सबसे छोटी असंख्या, उसकी वर्गशला का भी इस राशि में है, उसके अर्धच्छेद भी है, उसका प्रथम वर्गमूल है और वो राशि भी है। उसके आगे संख्यात सांजाने पर जघन्य युक्ता संख्या यानी आवली है, परंतु आवली के वर्गशाला का और अर्धच्छेद इस राशि में नहीं है, क्योंकि एक नियम बताया कि जो राशि विरलन और देय से प्राप्त होती है उसके वर्गशाला का और अर्धच्छेद राशि इस द्विरूप वर्गधारा में नहीं पाई जाती, ये उन्होंने एक नियम बताया अपने। फिर आवली के बाद प्रतरावली, फिर उसके बाद बहुत सारी उन्होंने अलग अलग हमारे संख्या ये बताए थे, हमने देखा था ना असंख्यात में प्रतरावली के आगे क्या देखा था हमने, असंख्यात वर्ग स्थान जाने पर पल्ले की वर्गशाला का सुचंगुल तो बाद में आएगा,
फिर अर्धच्छेद आएगा।
हाँ, फिर बहुत असंख्यात स्थान जाने पर अर्धच्छेद, फिर प्रथम वर्ग, नेक्स्ट स्थान पर पल्ल्य, ये पल्ल्य ने अद्धा पल्ल्य की बात। उसके बाद असंख्यात स्थान जाने पर, क्योंकि आगे जो सुचंगुल है वो विरलन राशि से उत्पन्न होता है, कैसे उत्पन्न होता है तो पल्ल्य को पल्ल्य के अर्धच्छेद बार लिखकर आपस में गुणा करने से सुचंगुल यानी अंगुल का प्रमाण आता है, इसलिए अंगुल के जो है अर्धच्छेद वर्गशाला का इसमें नहीं आएंगे, प्रथम वर्गमूल तो आएगा। तो हमने ये देखा था कितने स्थान आ गए उसकी चर्चा यहाँ नहीं थी, हम मान लेते पल्ल्य की वर्गशाला का व है तो व प्रमाण स्थान और आगे जाने पर, क्योंकि हमने देखा था जो विरलन है उसके अर्धच्छेद प्रमाण स्थान आगे जाना है तो विरलन ही हमारा पल्ल्य के अर्धच्छेद है, तो पल्ले के अर्धच्छेद का अर्धच्छेद है तो वो कितना आगे जाना पड़ेगा, तो कहते जितने वो स्थान पर पल्ल लिखा हमने पाया था ना उतने ही स्थान आगे जाएंगे दो वो जिसको हम कहेंगे तो हमें वो बात प्राप्त होगी यानी अंगुल प्राप्त होगा। अंगुल का नेक्स्ट है प्रतरांगुल, अंगुल इंटू अंगुल प्रतरांगुल, उसका स्क्वायर है ना, क्योंकि ये सारी स्क्वायर की धारा है वर्ग धारा है। तो हमने देखा था सुचंगुल है उसके आगे जाने पर प्रतरांगुल है, उसके आगे असंख्यात स्थान जाने पर जगत श्रेणी का घनमूल प्राप्त होता है, हमने देखा था। घनमूल क्यों कहा, क्योंकि जगत श्रेणी की राशि वो आगे वाली घन धारा में आएगी द्विरूप घन धारा, यहां नहीं है। उसके बाद हमने देखे थे कि जगत श्रेणी के घनमूल जो है वहां से असंख्यात स्थान जाने पर जगन्य परितानंत की वर्गशला का, जगन्य परितानंत की अर्धच्छेद राशि उसका प्रथम वर्गमूल और जगन्य परितानंत प्राप्त होता है। फिर उसके आगे असंख्यात स्थान जाने पर जगन्य युक्तानंत जो अभव्य राशि उसका प्रमाण होता है, और फिर वो विरलन से प्राप्त होती है, उसके लिए उसकी वर्गशाला का और अर्धच्छेद इसको नहीं लिया। जगन्य युक्तानंत का जो वर्ग है उसका ही नाम है जगन्य अनंतानंत, वो भी इसी राशि में आएगा। ये मैं 63 पेज पर पढ़ रही हूँ। देखो जगन्य परितानंत देखा हमने, यानी जगन्य परितानंत की वर्गशाला आएगी, असंख्या स्थान जाने पर उसका अर्धच्छेद प्रथम और वो संख्या जगन्य परितानंत के आगे युक्तानंत, असंख्या स्थान जाने पर युक्तानंत आया, उसके आगे नेक्स्ट स्थान जगन्य अनंतानंत। सेम प्रोसीजर नहीं है, खाली उसका एक बार स्क्वायर करो। जैसे हमने जगन युक्ता संख्यात का एक भी बार वर्ग किया तो असंख्याता संख्यात आया था, है ना, वैसे यहाँ पर भी। अब उसके आगे की भी कुछ संख्या बताएं, जगन्य अनंतानंत, फिर ये जीव राशि जो है आगे अनंत स्थान जाने पर जीव राशि आती है, अनंत स्थान जाने पर असंख्यात नहीं अनंत, फिर उसके आगे अनंत स्थान जाने पर पुद्गल आएगा। अभी वो जीव राशि की फिर वर्गशाला का अर्धच्छेद सब इसमें आ जाएगी, वो यहाँ यहाँ नहीं लिखा है, परंतु हमने जो पढ़ा था जीवकांड में से वहाँ आपको बताया। हाँ, हर एक की वो अपने अपने वर्गशाला का अर्धच्छेद उसमें ले लेना। उसके आगे अनंत स्थान जाने पर काल यानी तीन काल के समय को लेना है, फिर आकाश श्रेणी रूप आकाश जिसको कहेंगे, पूरा जो आकाश द्रव्य है उसकी श्रेणी सिंगल डायरेक्शन में, अनंत जीव के बाद अनंत स्थान जाने पर पुद्गल, केवल अनंत ने अनंतानंत अनंतानंत कहा है, एक बार भी नहीं बताया।
क्योंकि आगे क्या लिखा है, फिर से जगत श्रेणी के घनमूल से
63
जगत श्रेणी के घनमूल के असंख्या स्थान, असंख्या स्थान आगे जाकर तीनों जगन अनंत में से जगन परिचालन पीछे उसकी वर्ग सलाह का है, अर्ध प्रथम वर्ग जगन परिचालन जगन युक्तानंद जगन अनंतानंद।
विशेषार्थ का दूसरा पैराग्राफ देखो, जगन्य युक्तानंत का एक बार वर्ग करने पर जगन्य अनंतानंत की उत्पत्ति होती है, इससे अनंत स्थान आगे जाकर जीव राशि की वर्गशाला का होती है, वर्गशाला का, और उससे असंख्यात ने अनंत स्थान जाने पर उसी के अर्धच्छेद होते जीव राशि के, और उससे अनंत स्थान जाकर जीव राशि का प्रथम वर्गमूल होता है और फिर जीव राशि आएगी। अब जो जीव राशि है उससे अनंत स्थान आगे जाकर पुद्गल राशि की वर्गशाला का, देखो ना इसकी इमेजिन कर सकते हैं, उसकी वर्गशाला का अनंत स्थान जाने पर होती है तो वो मूल राशि कितनी बड़ी होगी, तो वर्गशाला का आगे अनंत स्थान जाने पर अर्धच्छेद राशि आती, उसके बाद अनंत स्थान जाने पर प्रथम वर्गमूल, फिर पुद्गल राशि आएगी। ऐसे पुद्गल और काल में ले लेना, ऐसे काल और आकाश में ले लेना। समाधान हो गया कि नहीं?
सो युक्तानंद सब का असंख्यात स्थान जाना है, और युक्तानंद के पश्चात जो जीव राशि है वहाँ पे अनंत स्थान,
खाली जीव राशि नहीं उस जीव की वर्गशाला का, फिर अर्धच्छेद के ये सब पूरा ले, हाँ सब ले, सब लेना। तो ये हमने देखे पुद्गल है, काल के समय आकाश की श्रेणी है, फिर नेक्स्ट स्थान आकाश का प्रतर, प्रतर रूप आकाश 64 पेज पर आते हैं, वो भी हमने देखा था कल। प्रतर आकाश कहो या प्रतर आकाश कहो या आकाश के प्रतर रूप क्षेत्र कहो, उससे अनंत स्थान आगे जाकर फिर हमको वहां मिले थे धर्म अधर्म द्रव्य के अगुरु लघु गुण के अविभाग प्रतिच्छेद, यानी वो कितना अनंत होगा बड़ा, फिर एक जीव के अगुरु लघु गुण के अविभाग प्रतिच्छेद, ऐसे उके अनंत स्थान बीच में छोड़ देना, फिर अनंत स्थान आगे जाकर सूक्ष्म निगोद लब्धि अपर्याप्त जीव के जगत में पर्याय नामक श्रुत ज्ञान के अविभाग प्रतिच्छेद की उत्पत्ति होती
है।
हाँ, मिनिमम ज्ञान, उसमें भी इतने अविभाग प्रतिच्छेद है, इतने अनंत, और हर एक वर्ग स्थान अनंत चले जाते नहीं, वो तो इमेजिनेशन के बाहर चली जाती है बात। एक बार वर्ग करो तो भी कितनी है, क्योंकि अनंतों में संख्या है वो, उसमें इतने है। हाँ, ये उसकी एक पर्याय की बात है ना। केवल ज्ञानी के कितने हो गए और वो कितना जानते हैं, यानी सभी द्रव्यों के सभी अविभाग प्रतिच्छेद, यानी अविभाग प्रतिच्छेदों की अगर अनंतता ख्याल में आती है ना, हम केवल वो पर्याय के अविभाग प्रतिच्छेद ऐसा कहकर छोड़ देते हैं, मतलब वो जीव राशि से पुद्गल हुआ, आकाश के प्रदेश, उसके आगे अनंत गुणा जाकर एक गुण के ये जो जघन्य ज्ञान के अविभाग प्रतिच्छेद है। और केवल ज्ञानी तो हर जीव के जो हर पर्याय की बात, कहाँ कितना क्या हो रहा है, हर पुद्गल में क्या है, यानी एक एक परमाणु
जाता होगा,
वही तो ज्ञान का स्वभाव ही है ना। सहज यानी वो कोई ऐसे, यानी हमें इच्छा करते हम इसको जानो, इसको जानो, इसको जानो, उनके तो सब ज्ञान में है सारा ही, तीन काल का जो कुछ है वो सब। हाँ देखो, हम यहाँ तक आए थे एक जीव के अगुरु लघु और फिर सूक्ष्म निगोद की बात, ये लब्धि अक्षर कहते हैं उसको। उसके आगे अनंत स्थान जाने पर जघन्य क्षायिक लब्धि प्राप्त होती है, और उससे अनंत स्थान आगे जाकर केवल ज्ञान की पहले वर्गशाला का लेना, फिर उसके केवल ज्ञान का अर्धच्छेद, और हरेक में कितने कितने अनंत स्थान जाएंगे। अब ये जो सभी वर्गमूल बताए वो क्रम से है, आठवां वर्गमूल, फिर नेक्स्ट सातवां वर्गमूल, छठा, पांचवा, चौथा, तीसरा, दूसरा, प्रथम वर्गमूल, फिर केवल ज्ञान। अभी हम आते हैं यहाँ पर 65 पृष्ठ पर, यहाँ से अपने आज की बात चालू होती है। अविभाग प्रतिच्छेद लेना है और क्षायिक लब्धि में क्षायिक सम्यक पर लेना तिर्यंच गति का, हाँ सबसे जघन्य, यानी उसमें जो कुछ हीना दिखता होती है अविभाग प्रतिच्छेद की, उसको ले लेना।
साहिक सभ्यता का जो अविभाग प्रतिच्छेद बताया, तो वहाँ पे ज्ञान का भी इतना ही उभार होता जाएगा।
ज्ञान की कहाँ बात है यहाँ पर,
नहीं
सम्यक की बात अलग है, ज्ञान गुण की बात अलग है। क्षायिक लब्धि में, क्षायिक लब्धि में क्षायिक सम्यक को लेना है मिनिमम, तो चौथे गुण स्थान वाले तिर्यंच गति के जो क्षायिक सम्यक, यानी वो यहाँ से मरकर जाने वाले के ही होगा, वहाँ तो कोई प्राप्त नहीं करता है, उसमें भी जो जघन्य में जघन्य विशुद्धि है उसको लेना है यहाँ पर, यानी सम्यक गुण का जो कोई जो निर्मल परिणमन है उसमें मिनिमम जो कुछ अंश होगा उसको यहाँ लेना है। विशेषण देखते हैं, क्या क्योंकि एक जीव के अगुरु लघु, एक जीव यानी कोई भी जीव, क्योंकि गुण के लिए है, गुण के लिए है, पर्याय के नहीं है। हाँ तो गुण में प्रत्येक गुण के जीव, निगोद जीव होगा या सिद्ध होगा, गुण के अविभाग प्रतिच्छेद तो उतने ही रहते हैं ना, वो तो पर्याय की बात ली, पर्याय में जो प्रकट है अविभाग प्रतिच्छेद उसकी बात ली, वहाँ गुरु लघु गुण के अविभाग प्रतिच्छेद, गुण के अविभाग प्रतिच्छेद, और यहाँ पर्याय के जघन्य पर्याय जो है, यानी ज्ञान में तो पर्याय को ले लेना, मिनिमम पर्याय बोल, समझ में आती बात। ज्ञान गुण के तो कितने अनंत हो गए, यहाँ तो ज्ञान की ये तो मिनिमम पॉसिबल पर्याय को लिया यहाँ पर, पर्याय अगुरु लघु गुण और ये ज्ञान की मिनिमम वाली पर्याय। हाँ गुण के तो होते ही ना, वही तो पर्याय में प्रकट होते हैं, हर एक गुण के अपने अपने अलग अलग है, पर्याय में तो हीनादिक होते हैं, गुण की तो संख्या फिक्स है, गुण के अविभाग प्रतिच्छेद तो फिक्स है हर एक के, नहीं समझे, गुण की टोटल सामर्थ्य कितनी है, सामर्थ्य किस में गिनेंगे हम, शक्ति कितनी है, अविभाग प्रतिच्छेदों में। सभी गुणों की समान नहीं है, सभी जीवों के अगुरु लघु गुण के समान है, सभी जीवों के ज्ञान गुण की समान है, क्योंकि केवल ज्ञान ही उसका सामर्थ्य है, पूरा सामर्थ्य जिसको हम कहेंगे। तो गुण की अपेक्षा सबका सेम है। यहाँ गुण अगुरु लघु गुण के अविभाग प्रतिच्छेद लिए थे, और उसके अनंत गुण अनंत स्थान आगे जाने के बाद वो पर्याय ज्ञान जिसको कहते उसको लिया। अलग अलग गुणों में अलग वेरिएशन है, अलग अलग गुणों में वेरिएशन। इकड़ची खिड़की बंद कर।
जगन ये साइक सब्जेक्ट करते हैं, जगन ये जो अविभाग प्रतिच्छेद है वो तो उत्पत्ति के पहले समय में होगा नहीं।
हम तिर्यंश गति की बात कर रहे हैं।
हाँ, तिर्यंश गति।
तो तिर्यंश गति में उत्पन्न होता है क्या?
नहीं होता।
शायिक सम्यक तो जो है ना, शायिक सम्यक तो प्राप्त करने वाला जी। भोग भूमि में वहाँ वहाँ जिसने तिर्यंश आयु बांधी है और जिस मनुष्य ने शायिक सम्यक तो प्राप्त किया है, पहले तिर्यंश आयु मिथ्या दृष्टि ने बांधी थी, बाद में समय दृष्टि हुआ, फिर क्षायिक समय दृष्टि हुआ और मरकर वो तिर्यंश आयु बांधी तो तिर्यंश में गया, तो वो भोग भूमि का तिर्यंश कहलाएगा। इसलिए लिए क्योंकि उसमें ऐसे मनुष्यों में जो क्षायिक प्राप्त करता है तो उसकी विशुद्धि बहुत है कि नहीं? हाँ, तिर्यंशों में तो कम विशुद्धि वाले जीव भी हो गए, यानी मिनिमम पॉसिबल कहाँ होते उन्होंने बता दिया।
तो यहाँ पे भी क्या पूछ रहा हूँ कि ये जो क्षायिक समय के जगली अभी बात करते थे, जन्म के पहले समय में होगा ऐसे खाली भी पूछ रहा
हूँ। ऐसा कुछ लिखा तो नहीं यहाँ पर। और जन्म के पहले समय में क्यों ले रहे आप? के समय को में कोई फर्क पड़ेगा क्या?
विशुद्धि बाद में पड़ेगी ना ज्यादा।
ये समय को संबंधी विशुद्धि अलग बात है। हाँ, जो हम मंदिर कषाय रूप विशुद्धि कहते हैं वो बात अलग, हर एक की अलग होगी, चारित्र गुण की अपनी अलग होगी। यहाँ सम्यक्व की यानी क्षायिक लब्धि में लेना है तो क्षायिक सम्यक्व संबंधी लेना बस। क्षायिक सम्यक्व में जितने कोई हीनादिक अंश हो गए उसमें से जो जघन्य अंश है उसको यहाँ लिया है। पर्याय ही है ये, क्योंकि क्षायिक ये तो पर्याय हो गए ना।
शिविर
है आपको आना है?
हाँ,
पता नहीं, अभी बताती हूँ। 16 को चलना है हमारे साथ। हाँ, 65 पेज। हाँ, 65 नंबर का पेज है, अभी हम पढ़ रहे हैं विशेषार्थ। जघन्य लब्धि अक्षर, ये लब्धि अक्षर है, लब्धि अक्षर इसी को कहते हैं जघन्य लब्धि अक्षर। इसी का दूसरा नाम है पर्याय ज्ञान, जिसको कहेंगे अक्षर का अनंतवा भाग। ये मिनिमम मोस्ट जो ज्ञान है, सूक्ष्म निगोध लब्धि पर्याप्त के पाया जाता है, उनमें भी सूक्ष्म निगोध में भी ज्ञान के बहुत सारे वेरिएशन हो गए, स्थान हो गए। ये सबसे मिनिमम है, उसके आगे जो अनंत वो असंख्यात बार अनंत गुणा बढ़ते 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 जो होगा बाद में, उसका नाम है अक्षर ज्ञान। एक अक्षर, दो अक्षर, ऐसा हम उसको अक्षरों में गिनेंगे। अनंत वाभाग, एक बार अनंत नहीं, क्योंकि उसमें ज्ञान के जो भेद है ना, षडगुणी वृद्धि के हम कहेंगे, ये मिनिमम है। फिर आगे वाला थोड़ा बढ़कर इसे असंख्यात बार बढ़कर फिर एक बार अनंत गुना होता है, फिर दूसरी बार अनंत गुना, फिर तीसरी बार, बीच बीच में षट्स्थान वृद्धि होती चली जाती है। तो ऐसे असंख्यात लोक बार अनंत गुना वृद्धि होकर बाद में वो अक्षर ज्ञान के अविभाग प्रतिच्छेद हो गए, इतना वो अधिक है। तो कहते हैं यहाँ वही जघन्य लब्धि अक्षर शुद्ध ज्ञान के अविभाग प्रतिच्छेदों से, उसमें संख्या गिननी हमको, अनंत स्थान आगे जाकर, यानी उसको रखो फिर उसका वर्ग 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 अनंतो बार। तीर्यंच गति में असंयत सम्यक दृष्टि जीव के जघन्य क्षायिक सम्यक लब्धि के अविभाग प्रतिच्छेदों के प्रमाण की प्राप्ति होती है। उसके अविभाग प्रतिच्छेद उतने होते हैं। उससे अनंत स्थान आगे जाकर केवल ज्ञान की वर्गशलाकाओं का प्रमाण उत्पन्न होता है। बीच में बहुत सारे स्थान हो गए, जो कितने बताएंगे, थोड़े थोड़े कुछ बता दिए हमारे फॉर एग्जाम्पल करके।
क्या वर्गशलाकाओं का तो वहाँ पे वेरियस वर्गशलाका
नहीं, वर्गशलाका का
क्योंकि
प्रमाण उत्पन्न होता है।
नहीं, मेरा क्वेश्चन क्या है कि केवल ज्ञान में भी अनंत गुणी बुद्धि आनी होती रहती है, तो यहाँ पे अलग अलग वर्ग
नहीं, एक
ही नहीं,
एक फिक्स ही है। केवल ज्ञान के अविभाग प्रतिच्छेद फिक्स है। वर्गशलाकाओं का है ना, वर्गशलाका का अनंत स्थान गत्वा वर्गशलाका हा बताया हमने।
यहाँ पे ओ का लिखा है इसमें, हाँ हमारे में भी कोई लिखा है
अर्ध छेदा। हाँ अच्छा, इसमें संस्कृत में भी है वर्गशलाका हाँ बराबर है, अर्ध छेदों का
शलाकाओं का
बराबर बराबर बराबर। तो फिर केवल ज्ञान का अष्टम वर्गमूल बताया, वहाँ का लिया और मूलम लिया।
आगे एक एक भी है।
हाँ
और ये पहले उन्होंने अनेक दो में वर्गशाला का अर्धच्छेद में अनेक
वही तो, इसीलिए उनको प्रश्न था।
ये
संस्कृत में भी उसका अनेक वचन लिया है। मैं अभी इसमें अपने
छेदों का तो वहाँ पे भी बहुवचन लिया है।
यहाँ तो ऐसे लिया है केवल ज्ञान की वर्गशाला का राशि है, अर्धच्छेद राशि है, फिर अष्टम वर्गमूल है, इसमें लिखा है जीवकांड में। क्योंकि आप अगर अलग अलग वर्गशलाकाएं अगर लेते हैं, एक मिनट वर्गशाला का एक ही होती है उसके, अभी उसी को वर्गशाला का उनका लिखा है। क्यों लिखा है, क्योंकि उसके अलग अलग स्थान हो ही नहीं, उसमें वर्गशाला का राशि एक ही बात, वो राशि है इसलिए शायद उसकी शलाकाएं यानी उनकी संख्या है। नहीं, वेरिएशन नहीं, एक ही है, बिल्कुल होगी
राशी,
वो बड़ी राशि के लिए, वो संख्या के लिए बताया लिखा होगा। देखो क्यों, देखो कितने मेरे क्या, मुझे क्या कहना है, अपनी पनट्ठी वाली विरूप वर्ग धारा की याद करो, अपन 4, 16, 256 पनट्ठी, पनट्ठी को केवल ज्ञान मान लो। द्विरूप वर्ग धारा में कितने स्थान देखे पनट्ठी तक, चार स्थान है द्विरूप वर्ग धारा में, पनट्ठी तक चार स्थान है। चार क्या है, पनट्ठी की वर्गशाला का है। तो पूरे यथार्थ में द्विरूप वर्ग धारा में कितने स्थान होंगे बोलो,
द्विरूप वर्ग धारा में कितने स्थान
केवल ज्ञान की वर्गशाला का प्रमाण। अभी तो इसीलिए मैंने पनट्ठी को याद किया आपको, वर्गशाला का यहाँ अलग अलग ले लो तो उसकी धाराएं उनकी संख्या बदल चली जाएंगी। इस धारा में कितने स्थान होने चाहिए। जैसे हमको पनट्टी तक मालूम है, पहला स्थान पहली वर्गशाला का किसकी है, अपनी चार की, फिर 16, तीन पर 256, चौथी स्थान पनट्टी, पनट्टी की वर्गशाला का चार है, तो द्विरूप वर्ग धारा में भी चार ही स्थान है टोटल। उदाहरण में चार है, वहां अभी केवल ज्ञान की वर्गशाला का ले लो, अगर उसकी वेरिएबल वर्गशाला का लेंगे तो उसके स्थान बदलते जाएंगे क्या?
वर्ग प्रमाण वृद्धि आनी नहीं होती, क्योंकि असंख्यक लोक वाली वृद्धि आनी होती है।
वो वृद्धि होने के बाद छोड़ो,
एक ही स्थान
फिर से, उससे अनंत स्थान आगे जाकर केवल ज्ञान की वर्गशाला, वर्गशाला का है नहीं उसके, तो वर्ग स्थान कौन से नंबर पर है, वो अनेक वचन से कोई उसका अन्य कुछ उसमें से अर्थ मत निकाले। उससे अनंत स्थान आगे जाकर, देखो आगे भी ऐसी कोई वर्गशाला का जहां आई होगी ना, मैं त्रेसठ पाण निकाल, 62 में भी ये संस्कृत में, ततो असंख्यात स्थानानि गत्वा वर्गशलाकाः, ततो असंख्यात स्थानानि गत्वा अर्धच्छेदाः, यहाँ पर भी लिखा है ना, जगत श्रेणी के घनमूल से असंख्यात स्थान, असंख्यात स्थान आगे जाकर तीनों अनंतों में जघन्य परितानंद की वर्गशलाकाएं है ना। उसको वर्गशाला का ही कहते हैं, उसको हाँ, हर एक अपने अपने राशि की, जो जो विरलन और देय से नहीं उत्पन्न हुए हैं, ऐसे कितनी राशियों की वर्गशाला का होगी। हाँ, जो अभी ऑड नंबर पर है उनकी नहीं है, जैसे 256 की वर्गशाला का तीन है, वो इसमें नहीं है, क्योंकि वो भी विरलन देय से उत्पन्न होती है राशि। जैसे आवली की वर्गशाला का नहीं थी, कुछ राशियों की है, ये वर्गशलाकाएं पहली पहले बहुत बार आई है बात, वर्गशलाकाएं उत्पन्न होती है, अकेले केवल ज्ञान के लिए नहीं लगाया है। देखो निकाल के देखो, नहीं नहीं वर्गशलाकाएं वो तो कहने की पद्धत है उसकी। बहुत बार वो बात आई है संस्कृत में भी, देखो हाँ हम यहाँ आए थे अभी, सब जगह वर्गशाला का है, उसकी वर्गशाला का है यानी उसके वर्ग स्थानों की संख्या जो, तो उससे अनंत स्थान आगे जाकर केवल ज्ञान की वर्गशलाकाओं का प्रमाण उत्पन्न होता है, उससे अनंत स्थान आगे जाकर उसी केवल ज्ञान के अर्धच्छेदों का प्रमाण प्राप्त होता है, उससे अनंत स्थान आगे जाकर केवल ज्ञान का अष्टम वर्गमूल प्राप्त होता है। यहाँ तक बात ख्याल में, आठवां वर्गमूल में वर्गमूल का वर्गमूल का वर्गमूल करते जाओ नीचे नीचे की ओर, इस अष्टम वर्गमूल का एक बार वर्ग करने पर केवल ज्ञान का सप्तम वर्गमूल प्राप्त होता है, इसका एक बार वर्ग करने पर केवल ज्ञान का षष्ठ वर्गमूल प्राप्त होता है, इसका एक बार वर्ग करने पर केवल ज्ञान का पंचम वर्गमूल प्राप्त होता है, इसका एक बार वर्ग करने पर केवल ज्ञान का चतुर्थ वर्गमूल प्राप्त होता है, इसका एक बार वर्ग करने पर केवल ज्ञान का तृतीय वर्गमूल प्राप्त होता है, इसका एक बार वर्ग करने पर केवल ज्ञान का द्वितीय वर्गमूल प्राप्त होता है, और इसका एक बार वर्ग करने पर केवल ज्ञान का प्रथम वर्गमूल उत्पन्न होता है। विवक्षित राशि के वर्गमूल को प्रथम वर्गमूल कहते हैं। प्रथम वर्गमूल के वर्गमूल को द्वितीय और द्वितीय के वर्गमूल को तृतीय वर्गमूल कहते हैं। इसी प्रकार आगे आगे कहना चाहिए। जैसे इकट्ठी का प्रथम वर्गमूल, प्रथम मूल बादाल, मूल कहो या वर्गमूल एक ही बात है। द्वितीय मूल पन्नट्ठी, यानी इकट्ठी का ये द्वितीय मूल है। अच्छा, सब जगह अच्छा है। प्रथम वर्गमूल कहने से और स्पेसिफिक हो जाता है ना, कहीं कहीं उसकी संदृष्टि मूल भी लिख देते हैं। वर्गमूल कहो या मूल कहो एक ही बात है। यहाँ उन्होंने नई एडिशन में उसको स्वीकारा है, यानी सुधारा है। तृतीय वर्गमूल इस तरह से आगे आगे लिखना है। चतुर्थ वर्गमूल, हाँ हाँ, अष्टम यानी छोटी। अब यहाँ ना, यहाँ बताया ना, इकट्ठी का प्रथम वर्गमूल बादाल, बादाल का प्रथम मूल है जो पन्नट्ठी, द्वितीय वर्गमूल। वो बादाल का प्रथम है परंतु इकट्ठी का द्वितीय वर्गमूल होगा ना। जैसे हम कहें ना, पन्नट्ठी का वर्गमूल कितना, 256, पर वो इकट्ठी का तृतीय वर्गमूल हो जाता है। इकट्ठी का चतुर्थ वर्गमूल निकालो तो 16 होता है, पंचम वर्गमूल निकालो 4 है, और छठा वर्गमूल निकालो तो 2 है। ये द्विरूप वर्गधारा में उस पूर्व पूर्व स्थान को कहेंगे हम। अब 72 नंबर का जो यह श्लोक है, गाथा, उसको पढ़ेंगे। सैमादि मूल भगे केवल मंतम पमाण जेठमिणम वरखयलद्दिनामम सगवगसलाहवे ठाणम सकृतादि मूल वर्गे केवल मंतम प्रमाण जेष्ठमिदम वरक्षायकलब्धि नाम स्वकवर्ग शला भवे स्थानम। गाथा केवल ज्ञान के प्रथम वर्ग मूल का एक बार वर्ग करने पर केवल ज्ञान के अविभाग प्रतिच्छेदों का प्रमाण प्राप्त होता है। जैसे हम अविभाग प्रतिच्छेदों के लिए अनेक वचन है ना, वैसे वर्गशलाकाएं उसको कहेंगे। सिंगल एक होगी तो हम वर्गशलाका कहेंगे। वैसे वहां पर भी जो शब्द उन्होंने लिया है, वर्गशलाका राशि बताया है। राशि में अनेक, यानी वो तो एक से ज्यादा है ना संख्या, तो उसको राशि कह देंगे। इसलिए यहाँ वर्गशलाका ऐसा शब्द आया है और उसी का ट्रांसलेशन वर्गशलाकाएं होगा। तो केवल ज्ञान के प्रथम वर्गमूल का एक बार वर्ग करने पर केवल ज्ञान के अविभाग प्रतिच्छेदों का प्रमाण प्राप्त होता है। इतना मात्र ही द्विरूप वर्गधारा का अंतिम स्थान है। द्विरूप वर्गधारा में यह अंतिम स्थान है केवल ज्ञान, यही उत्कृष्ट प्रमाण है। इससे उत्कृष्ट कुछ नहीं हो सकता। इसी का नाम उत्कृष्ट क्षायिक लब्धि है। केवल ज्ञान की वर्गशलाकाओं का जितना प्रमाण है, शलाकाएं लिखी ना, केवल ज्ञान की वर्गशलाकाओं का जितना प्रमाण है उतना ही प्रमाण, हाँ देखो मैंने यही बताया था ना, द्विरूप वर्गधारा के समस्त स्थानों का है। हमने देखा था एक एक धारा में कितने स्थान हो सकते हैं, उसी का यहाँ प्रमाण बता रहे थे। केवल ज्ञान की वर्गशाला का प्रमाण अनंत, कितने अनंत स्थान गए, क्योंकि हमने जीव अनंत देखे, उसके अनंत स्थान जाने पर वो पुद्गल की वर्गशाला का ऐसे ऐसे, फिर काल की, फिर आकाश की, फिर प्रतराकाश की, हाँ कितने ज्यादा, क्योंकि उसके आगे भी बीच में हमने धर्म अधर्म के अगुरु लघु गुण के देखे, पर वो पर्याय ज्ञान के देखे, इस तरह से आगे जाते जाते जगन्य क्षायिक लब्धि, फिर उसके अनंत अनंत स्थान जाने के बाद केवल ज्ञान की वर्गशाला का है ना, फिर आगे अनंत स्थान जा पर अर्धच्छेद, यानी कितनी बड़ी संख्या है ये। तो इसमें स्थान कितने टोटल, केवल ज्ञान की जो वर्गशाला का है उतने द्विरूप वर्ग धारा में स्थान है, नंबर ऑफ स्थान। जैसे हम पनट्ठी तक तो चार स्थान बताते, पनट्ठी की वर्गशाला का चार है, तो पनट्ठी तक स्थान कितने, तो चार है। तो हमारा अंतिम स्थान तो केवल ज्ञान है, तो केवल ज्ञान की जो वर्गशाला का है उतने स्थान द्विरूप वर्ग, चार से शुरू हुए थे, चार 16 256 और कहाँ तक हो गए, केवल ज्ञान की वर्गशाला का प्रमाण, ये पूरे ही स्थान आ गए द्विरूप वर्ग धारा के। विशेषण ये 7 गाथाओं का उन्होंने बताया एक साथ। द्विरूप वर्ग धारा का सर्वजघन्य और प्रथम स्थान 2 का वर्ग 4 है, चार ये प्रथम स्थान है, उसकी वर्गशाला का 1 है, तथा सबसे अंतिम और उत्कृष्ट स्थान केवल ज्ञान के अविभाग प्रतिच्छेदों का प्रमाण है, क्योंकि हमको उसकी संख्या देखनी है ना, इसलिए अविभाग प्रतिच्छेदों का प्रमाण लिया। इस धारा के मध्यम स्थानों में निम्नलिखित राशियां प्राप्त होती हैं, क्योंकि हमने देखे ना बहुत सारी राशि इसमें आती हैं, उनमें से कुछ उन्होंने बता भी दिए। संख्यात में कुछ भी कहो तो वो संख्यात ही है, चार, फिर वो हमने देखा 16 है, 256 है, पनट्ठी है, बादाल है, इकट्ठी है, भी चले चलो, तो संख्यात संख्यात होते 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 अमुक एक उत्कृष्ट कुछ संख्यात तक पहुंच गए, तो वो क्या है, तो जघन्य मिनिमम असंख्यात है ना, जघन्य परिता संख्यात, उसकी वर्गशाला का राशि आएगी पहले में, पहले संख्यात में आएगी। असंख्यात तो आगे चला गया, परंतु उसकी वर्गशाला का कौन, कितने स्थान जाने के बाद जघन्य परिता संख्यात आती है, तो कितने संख्यात स्थान, पर्टिकुलर संख्या जो कुछ होगा वो असंख्यात नहीं हो सकता। मिनिमम असंख्यात जो जघन्य परिता संख्यात है उसकी वर्गशाला का संख्यात होगी, उसके आगे कितने संख्यात स्थान चले जाओ तब उसकी अर्धच्छेद राशि आ जाएगी, उसके और संख्यात स्थान चले जाओ तो उसका प्रथम वर्गमूल आएगा और फिर जघन्य परितानंत आएगा। जघन्य परितानंत के बाद उन्होंने जघन्य युक्तानंत को भी बताया था, परंतु वो कैसी राशि आती है, तो विरलन और देय से होती है, तो उसकी वर्गशाला का या अर्धच्छेद राशि इस धारा में नहीं आएगी। तो जघन्य परितानंत के बाद उन्होंने कहा संख्यात स्थान जाने पर, असंख्यात नहीं, भले उसको जघन्य परिता संख्यात का जघन्य परिता संख्यात बार आपस में गुणा किया है, हाँ, फिर भी हम वर्ग का वर्ग इस रूप से अगर उसको लेते हैं तो संख्यात बार ही होगा। तो जघन्य युक्ता संख्यात यानी आउली आती, आउली के एक स्थान आगे चलो तो प्रतरावली आती, आउली को हम जघन्य युक्ता संख्यात कहते हैं और प्रतरावली को जघन्य असंख्याता संख्यात कहते हैं। वही यहाँ बता रहे, देखो निम्न राशि आती है, यहाँ से पढ़ेंगे क्योंकि हमने वो तो बहुत बार देखा था कौन से असंख्यात स्थान आते हैं, अभी शुरू में हमने सारा रिवीजन की थी अभी। देखो इस धारा के मध्यम स्थानों में निम्नलिखित राशियां प्राप्त होती है, जघन्य परिता संख्या, जघन्य युक्ता संख्यात प्रमाण रूप आवली, जहां जहां अर्धच्छेद है वर्गशाला का है, उसकी बात नहीं, मुख्य राशियां ली अभी यहाँ पर, जघन्य असंख्याता संख्यात रूप प्रतरावली, फिर अद्धापल्य, उसके बाद सूचंगुल, हमने देखा था ना जितने स्थान जाने पर अद्धापल्य राशि आती है उतने ही स्थान वर्ग स्थान आगे चलकर अंगुल आता है, जिसको सूचंगुल भी कहते हैं, उसके बाद नेक्स्ट स्थान है प्रतरांगुल, फिर आगे कितने असंख्या स्थान जाने के बाद जगत श्रेणी का घनमूल, उसकी राशि प्राप्त होती है, फिर जघन्य परितानंत, उसके असंख्या स्थान जाने के बाद इसको आएगा इसका नंबर, जघन्य परितानंत, फिर जघन्य युक्तानंत जो अभव्य राशि का प्रमाण है, फिर जघन्य अनंतानंत, उसके बाद संपूर्ण जीव राशि, संपूर्ण पुद्गल राशि, संपूर्ण काल के समय, श्रेणी आकाश, प्रतराकाश, धर्माधर्म द्रव्य के अगुरु लघु गुण के अविभाग प्रतिच्छेद, फिर एक जीव के अगुरु लघु गुण के अविभाग प्रतिच्छेद, इसके बाद सूक्ष्म निगोदिया लब्धि अक्षर पर्याय श्रुत ज्ञान के अविभाग प्रतिच्छेद। ये अनंत अनंत स्थान बीच बीच में है सबके, असंयत तिर्यंच के जघन्य क्षायिक संयुक्त रूप जघन्य लब्धि के अविभाग प्रतिच्छेद, इसको क्षायिक लब्धि कहेंगे। उसमें क्या लिखा है आपकी पुस्तक में, जघन्य लब्धि लिखा है का जघन्य क्षायिक लब्धि लिखा है? और 20 नंबर पर केवल ज्ञान के अविभाग प्रतिच्छेद। हमने इसके बीच में भी कहीं कहीं वो वर्गशाला का अर्ध केवल ज्ञान के पहले भी उसके आठवें वर्गमूल से बात देखी थी, ये सब इसमें उन्होंने शॉर्ट में केवल 20 नाम बता दिए। अनंत के लिए असंख्यात स्थान जाते हैं और असंख्यात के लिए संख्यात स्थान जाते हैं, यानी जघन्य परिता संख्यात से आवली वाला जो जघन्य युक्ता संख्यात समय प्राप्त होते हैं वहाँ संख्यात ही स्थान जाते हैं, असंख्यात नहीं लगते उसके लिए, संख्यात बार ही वर्ग हो जाता है। श्रद्धा गुण की है वो, हाँ श्रद्धा गुण से शुरू होता है बराबर, क्योंकि पहले में पहले क्षायिक पणा किस में प्राप्त होता है तो श्रद्धा में होता है ना, क्षायिक सम्यक का, बाकी सब जो क्षायिक है वो बारहवें गुणस्थान के बाद ही वो सब प्राप्त होगी ना,
चारित्र का होगा,
हाँ चारित्र का हो जाएगा बारहवें में
और पीछे
बाकी। अभी हम यहाँ पढ़ते हैं 73 के ऊपर की लाइन देखो, अत्र धारात्रये, अत्र धारात्रये इन तीन धाराओं में, अभी उसमें से हमने एक
अथ लिखा है,
अथ है ना, सॉरी अथ अत्र नहीं अथ, धारात्रये यानी इन तीन धाराओं में कौन सी, अभी तो हमने द्विरूप वर्ग धारा ही देखी है और आगे दो और आएगी, द्विरूप घन धारा और द्विरूप घना घन धारा। तो कहते अथ धारात्रये सर्वत्र अविशेषेण, विशेषण है उसके स्पेसिफिक, अविशेषण है सामान्य रीति से, अविशेषेण वर्गशलाकादि प्राप्तौ तन नियमम आह, यानी उसमें जो कुछ वर्गशला का आदि, आदि में वर्गशला का अर्धच्छेद आदि जो प्राप्त होते हैं उसके बारे में कुछ नियम यहाँ बताएंगे, तीनों राशियों के लिए कॉमन है इसलिए अविशेष कह दिया। देखो हिंदी में ये वाक्य का अर्थ देखो नीचे, द्विरूप वर्ग धारा, द्विरूप घन धारा और द्विरूप घन घना घन धारा, एक कॉमा लगा लो, इन तीन धाराओं में पाई जाने वाली राशियों की वर्गशलाकाओं एवं अर्धच्छेदों के संबंध में विशेष नियम। पहले हम गाथा पढ़ेंगे, बाद में वो हिंदी में उसका अर्थ देखेंगे। उपज दिजो राशि विरलन दिज कमेण तस्सेथ वग्गसलद्धच्छेदा धारातिदयेन जायन्ते, उत्पद्यते यह राशि विरलन देय क्रमेण तस्यात्र वर्गशलार्धच्छेदा धारात्रितयेन जायन्ते। आसान है ना उसका अर्थ, उत्पद्यते ने उत्पन्न होती है, यह राशि ने जो राशि, कैसे विरलन देय क्रमेण, विरलन और देय रूप से जो राशि उत्पन्न होती है उसकी वर्गशला यानी वर्गशला का और अर्धच्छेद इस धारा में यानी इस यानी तीनों ही धारा में नहीं पाए जाते। ये तो वहाँ यही इसी धारा इसी सूत्र का रेफरेंस दिया था, गाथा पहले जो नियम बताया था ना वहाँ ब्रैकेट में लिखा था गाथा नंबर 73। हाँ देखो ये क्या नियम है उसको देखते हैं, नीचे गाथार्थ लिखा ना उसको पढ़ेंगे। जो राशि विरलन और देय के विधान से जिस धारा में उत्पन्न होती है, ये अपनी अपनी धारा की बात है, द्विरूपर्ग धारा की वो राशि विरलन देय से वहां उत्पन्न होगी, वो घन की और घना घन की जो धारा अपने अपने देय विरलन से उत्पन्न होती है, तो उसी की बात यहाँ कह रहे हैं। उस राशि की वर्गशलाका और अर्धच्छेद उसी धारा में नहीं प्राप्त हो सकते, ये पर्टिकुलर उसी धारा की बात है, क्योंकि हमने देखा ना कुछ कुछ संख्याओं के तो अर्धच्छेद और वर्गशलाका उन्होंने बता दिए, किसी किसी की नहीं बताई, जैसे आवली की नहीं होती है, परंतु जघन्य परिता संख्यात की तो होती है। विशेषार्थ, जिस धारा में विरलन देय क्रम से जो राशि उत्पन्न होती है, उस राशि की वर्गशलाका और अर्धच्छेद उसी धारा में नहीं प्राप्त हो सकते। जैसे मान लो अंक संदृष्टि में, यानी काल्पनिक छोटी संख्या ली, विरलन राशि 16 है और देय राशि भी 16 है, अतः 16 का एक एक विरलन कर प्रत्येक अंक पर 16 देय देकर परस्पर गुणा करने से इकट्ठी का प्रमाण प्राप्त होता है, यानी 16 को 16 बार लिखकर आपस में गुणा करने से इकट्ठी आती है। इस इकट्ठी के अर्धच्छेद 64 और वर्गशलाकाएं 6 है, क्योंकि पहले स्थान पर हमने देखा 4 है, दूसरे पर है 16, तीसरे पर 256, चौथे पर पनट्ठी, पांचवे पर बादाल और छठे पर इकट्ठी, तो उसकी वर्गशलाकाएं 6, तो वो द्विरूप वर्ग धारा में नहीं है। उसके अर्धच्छेद है 64, तो कहते इकट्ठी तो द्विरूप वर्ग धारा में, पर उसके अर्धच्छेद 64 इस धारा में नहीं है, वो अन्य धारा में है कि नहीं वो अपना प्रश्न नहीं है, वो इस धारा में वो नहीं पाए जाते, किंतु इकट्ठी मिलेगी। ऐसे हमने 256 पर भी देखा था, वो भी 4 के विरलन और देय से प्राप्त होता है, उसके भी वर्गशलाका और अर्धच्छेद इस राशि में नहीं मिलते। हम 66 पेज पर आए हैं। यहाँ यही बात हमने देखी थी कि द्विरूप वर्ग धारा का जघन्य स्थान है 4 और उत्कृष्ट स्थान है केवल ज्ञान के अविभाग प्रतिच्छेद, और उसमें टोटल नंबर ऑफ स्थान कितने हैं, केवल ज्ञान की वर्गशलाका के प्रमाण है, जो हमने ऑलरेडी बहुत बार रिवीजन की, उसी के वो 20 अलग अलग नाम इस धारा के कुछ विशेष संख्याएं बताई उन्होंने। 65 पेज पर नीचे लिखा था ना, जघन्य परिता संख्यात, फिर जघन्य युक्ता संख्यात, फिर आवली प्रत्रावली वगैरह वगैरह, तो ये सब उन्होंने नाम लिखे हैं। उसके बाद ये जो नियम हमने बहुत बार देखा था वही यहाँ हम पढ़ रहे थे। गाथार्थ देखो डायरेक्ट कि जो राशि 73 का गाथार्थ मिला, विरलन और देय के विधान से जिस धारा में उत्पन्न होती, क्योंकि यहाँ तीनों धाराओं के लिए यह नियम लागू होता है कि जो जो राशि विरलन और देय देकर उत्पन्न होती है, उस राशि के वर्गशलाका और अर्धच्छेद उसी धारा में नहीं पाए जाते। अब ये विशेषार्थ में उन्होंने यही बताया कि 16 का विरलन कर दो, यानी 16 को 16 बार लिखो, आपस में गुणा करो, तो वो इकट्ठी नाम की वो संख्या आती है। इकट्ठी की वर्गशलाका है 6, वो छठे स्थान पर है, वो इस धारा में नहीं मिली हमको, और उसके अर्धच्छेद राशि है 64, वो भी इस धारा में नहीं है। यहाँ तक अपनी बात यहाँ हो गई है। यह नियम तीनों धाराओं के लिए है, वो लास्ट लाइन इसमें हमने पढ़ी। अब हम आते हैं 67 पेज पर, 67 पेज पर आते हैं। 74 नंबर के उसके ऊपर लिखा है अथ धारा त्रय, यानी अब इन तीनों धाराओं में ऊपरी 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 यानी ऊपरी ऊपरी आगे आगे ऊपरी ऊपरी राशौ अर्धच्छेद प्रमाणम आह, ये राशावर्ध है ना, वो राशावर्ध व कहाँ से आया, औ और अ का व होता है, वो भक्तामर्ग गाते हैं ना, पहला श्लोक मालूम है? बोलो। मणि प्रभाणम आगे बोलो। प्रणतमौली मणि प्रभाणम उद्योदतम दलित पाप तमोवितानम सम्यक प्रणम्य जिनपाद युगम युगादा आगे वालंबनम। ये वालंबन क्या होता है? पाद युद पादव और आलंबन औ और अ वा हो गया औ और आ है ना आलंबन औ और आलंबन तो उसका आ हुआ और यहाँ वा हुआ पादा वालंबनम जन पाद युगम युगादा वालंबनम यानी पाद युगम युगादौ आलंबनम ऐसा चाहिए उसका वा और हाँ पहले आ हुआ और आगे वा हो गया। यहाँ क्या है? राशौ अर्धच्छेद राशा अर्धच्छेद ये तो संस्कृत के समास कॉम्बिनेशन के कुछ नियम है। तो इसको अगर हम इसे तोड़कर पढ़ना है ऐसा डायरेक्ट पढ़ सकते राशा अर्धच्छेद प्रमाण माह उसका अर्थ नहीं समझता है। राशौ अर्धच्छेद प्रमाणम आह आह ने बताते हैं देखो तीन धाराओं में ऊपर ऊपर की राशि में अर्धच्छेदों का प्रमाण कहते हैं। ऊपर ऊपर की राशि ने हमें मालूम है 4, 16, 256 तो चार के ऊपर की राशि है 16 चार का अर्धच्छेद कितना है 2 ऊपर की राशि 16 का
चार
यानी 2 गुना 256 का 8 यानी 2 गुना फिर 15 का 16 2 गुना ऐसे 2 गुना 2 गुना जहाँ राशि वर्ग रूप होती है वहाँ अर्धच्छेद 2 गुना होते हैं। देखो हम इसको पढ़ेंगे 74 को वग्गा दुवरिम वग्गे दुगुणा दुगुणा हवन्ति अर्धच्छिदि धारातय सठाणे तिगुणा तिगुणा परठाणे वर्गादुपरिम वर्गे द्विगुणा द्विगुणा भवन्ति अर्धच्छेदा धारात्रये स्वस्थाने त्रिगुणा त्रिगुणा परस्थाने। देखो यहाँ क्या कहना चाहते हैं ये परस्थान है और स्वस्थान है वो क्या बात है उसको हम यहाँ देखेंगे। यह हमारे पास ये तो तीन धाराओं की शुरुआत की तो फिगर मालूम है ना आपको द्विरूप वर्ग धारा तो मालूम है 4, 16, 256, 15 द्विरूप घन धारा में पहला स्थान कौन सा है 64 8 का वर्ग 64 फिर 64 का वर्ग 4096 आगे छोड़ देते हैं। और यहाँ तीसरे घनाघन में हाँ 268000 कुछ था कि नहीं उस दिन हमने देखा था हाँ कुछ बात नहीं छोड़ दो उसको 2 लाख समथिंग है। तो यहाँ क्या कहना चाहते हैं अर्धच्छेद राशि अभी हम देखेंगे। अर्धच्छेद का अर्थ समझते हैं वो संख्या कितने बार 2 को आपस में गुणा करने से आएगी या इसको 2 का भाग दे दो कितने बार 2 का भाग देख सकते उतने बार दे दो उस संख्या को अर्धच्छेद राशि कहते हैं। द्विरूप वर्ग धारा में 4 का अर्धच्छेद है 2 हम कलर पेंसिल से लिखेंगे यहाँ पर बीच में इसका 2 है उसके 2 गुना 16 का है 4 दुना 8 256 का है उसके 2 गुना करेंगे 16 है तो अपनी धारा में 2 गुना 2 गुना होता है। अब 64 के अर्धच्छेद कितने हैं
64 के अर्धच्छेद नहीं नहीं नहीं
कितने 2 से भाग दे दो आप निकाल लो पेपर निकाल 6 है 6
3 गुना
अरे अभी तो हमने अभी तो गाथा पढ़ी हमने
3 गुना 2 का 3 गुना
परस्थान में
3 गुना
यहाँ अपनी ही राशि में आगे ऊपरी स्थान में तो 2 गुना 2 गुना होता है परस्थान में उसी स्थान में लेना है
3 गुना
यानी वो द्विरूप वर्ग धारा के बदले हम द्विरूप घन धारा में गए इसके पहले स्थान में 2 है तो वहाँ हो गए 6 और वहाँ 2 लाख वगैरह जो हुई ना उससे भी 3 गुना हो जाएगा, 600 3 गुना 18 हो जाएगी। क्योंकि घन रूप राशि है ना, घन रूप राशि है तो उसके अर्ध छेदों की टोटल हो जाएगी। देखो फिर से, जहाँ वर्ग रूप राशि आती है, हमने 4 के अर्ध छेद कितने हैं, 2 है, इंटू 4 किया है, इसके भी अर्ध छेद 2 है, तो अर्ध छेद और अर्ध छेद प्लस होते हैं। अभी अभी हम 4 का घन 64 किया, तो हर एक के अर्ध छेद 2 है, उसकी टोटल हो जाएगी। राशि जब गुणाकार रूप में होती है तो अर्ध छेदों की टोटल होती है। आगे भी ये बात काम की है, कोई संख्या भागाकार से आती है ना, देख लो 256 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 4 कितने आए, 64 आ गए। तो हमको 64 के अर्ध छेद निकालने, 256 के अर्ध छेद है 8, 4 के है 2। जब संख्या जो भागाकार में है तो अर्ध छेद वो माइनस में चले जाएंगे, 8 - 2 6 आ जाते। यदि ये संख्या गुणकार में होती, 256 गुणा 4 कितने हो गए, ये प्लस हो जाएगा, 1024 होगी संख्या। तो 1024 के अर्ध छेद कितने, तो 256 के 8 है प्लस 4 के 2 है, ये 10 हो जाएगी। ये हमको अर्ध छेद मालूम है तो वो भी हम उसको निकाल सकते हैं। 14 अर्ध छेद वाली संख्या कौन सी है, तो जो अर्ध छेद हमको मालूम है उसको ले लो ना। 8 अर्ध छेद वाली संख्या है 256, और 8 + 6 = 64 आते हैं, तो 6 के अर्ध छेद है 64। तो ये हमारी, हाँ 6 है 64 का अर्ध छेद, बराबर है, अच्छा किया सुधारा, 64 के अर्ध छेद 6 है। तो ये हमारी मूल राशि मिली, इसका गुणकार करो तो हमें मूल राशि मिल जाएगी। नजदीक अच्छा है ना। तो हमने आपको आज 1 रुपया दिया, कल 2 दिए, परसों 4 दिए, महीने भर में कितने मिलेंगे आपको, डबल डबल टोटल बता देना था। वो अंतर्धनम गुणगुणियम 30वें दिन में हमें टोटल चाहिए, 30वें दिन में कितने वो नहीं पूछा हमने आपको, कल बता देना। माइनस करना, हाँ माइनस 1 करना, हाँ लास्ट वाले जैसे 32 अगर होता है, हम 32 दिन का मान लेते हैं ना, तो 32 हुआ ना इंटू 2 64 माइनस 1 63 हो जाएगा, पर यहाँ सबकी टोटल चाहिए हमको, 1 + 2 + 3 संकलन धन निकालते हैं। देखो अभी आगे बढ़ेंगे हम, ये आने वाली सब बातें हमने तो जीव कांड में से पढ़ी ना, हमको कहाँ आती थी। यहाँ तो तीनों ही धाराओं के लिए ये जो कुछ नियम है उसको बता रहे। अभी अभी हिंदी में पढ़ेंगे तो ख्याल में आएगा आपको, मैंने केवल आपको संस्कृत के आधार से बताया। देखो इन तीन धाराओं में ऊपर ऊपर की राशि में अर्ध छेदों का प्रमाण कहते हैं, गाथार्थ तीनों धाराओं के स्वस्थान में, स्वस्थान ने अपनी अपनी धारा, और परस्थान ने द्विरूप वर्ग स्थान के वर्ग धारा से द्विरूप घन धारा, ये परस्थान हो गया। स्वस्थान में वर्ग से ऊपर के वर्ग में अर्ध छेद दुगुणे दुगुणे, और परस्थान में तिगुणे तिगुणे होते हैं, क्योंकि नेचुरली उतनी बार संख्या को लिखा है तो उसके अर्ध छेदों की टोटल हो जाएगी। यानी ये बेस अगर हम ख्याल में रखते हैं ना, जहाँ राशि गुणकार में होती है वहाँ अर्ध छेदों की टोटल होती है, और परस्थान में तिगुणे तिगुणे होते हैं। विशेषार्थ, जहाँ निज धारा की अपेक्षा होती है उसे स्वस्थान कहते हैं, जहाँ परधारा की अपेक्षा होती है उसे परस्थान कहते हैं। ये स्वस्थान परस्थान जहाँ जिस विषय के बारे में वो अलग अलग अपेक्षा, उसके अर्थ अलग होता है। बंद के प्रकरण में हमने देखा स्वस्थान और परस्थान, उसका अर्थ अलग होता था। हम यहाँ का अर्थ भी ख्याल लेते हैं। तीन धाराओं के स्वस्थान में वर्ग से ऊपर वाले वर्ग में अर्धछेद नियम से दुगुने दुगुने होते हैं और परस्थान में तिगुने तिगुने होते हैं। जैसे द्विरूप वर्गधारा का प्रथम स्थान चार है और इसके अर्धछेद दो है, इसके ऊपर दूसरा वर्ग स्थान 16 है, ये इसका स्वस्थान में लेना, जिसके अर्धछेद चार है जो दो के दुगुने हैं। इसके ऊपर तीसरा स्थान 256 है जिसके अर्धछेद 8 है जो 4 के दुगुने हैं। इसी प्रकार आगे आगे भी जानना चाहिए। इसी प्रकार परस्थान अपेक्षा द्विरूप वर्गधारा के प्रथम स्थान 4 के अर्धछेद 2 है तथा द्विरूप घनधारा के दूसरे स्थान, ये धारा का दूसरा स्थान है परंतु वर्ग का पहला स्थान है, यानी कहीं कहीं दूसरा, यहाँ पहला और वहाँ दूसरा, तो इस धारा में पहला स्थान 8 कहने की पद्धति चली है परंतु उसकी वर्गशाला का 64 की पहली होगी। वर्गशाला का में वो 8 को नहीं गिनेंगे हम, वो वर्ग स्थान नहीं है। 64 के अर्धछेद 6 है जो 2 के तिगुने हैं। द्विरूप वर्गधारा के दूसरे स्थान 16 के अर्धछेद 4 है तथा द्विरूप घनधारा के तीसरे स्थान 4096 के अर्धछेद 12 है जो 4 के तिगुने, यानी 16 का घन 4096 है तो 16 के अर्धछेद से तिगुना उसके हो जाएंगे 12। इसी प्रकार परस्थान अपेक्षा नीचे के स्थान से ऊपर के स्थान के अर्धछेद नियम से तिगुने तिगुने होते हैं। वहाँ ऐसा लेना है, उन्होंने 4 को पहला स्थान बताया और यहाँ नीचे 64 को दूसरा स्थान बताया, इसलिए ऊपर का ये घटित हुआ। परस्थान में ऊपर का है ना, द्विरूप वर्गधारा का प्रथम स्थान उन्होंने 4 गिना और द्विरूप घनधारा का द्वितीय स्थान 64 लिया, भले वो वर्गशाला का उसके एक होगी, स्थान में उसको दूसरा गिनते हैं, ये पद्धति है, इसलिए ऊपर का स्थान बताया। यानी अपने स्थान में ऊपर का स्थान 2 गुना और परस्थान में ऊपर का स्थान 3 गुना।
परस्थान में नीचे,
यानी अभी यहाँ उन्होंने इस तरह से, मैंने आपको वर्ग स्थान की अपेक्षा बात ली, अब यहाँ 4 16 256 लिखते हैं ना, वैसे यहाँ 8 लिखने की पद्धति है, 8 64 फिर आगे की संख्या लिखेंगे 4096 वगैरह। तो इसके लिए दूसरा, इसका ऊपर का स्थान है 4 के लिए, अपने स्वस्थान में 16 ऊपर का स्थान है और 4 के लिए 64 परस्थान में ऊपर का स्थान है, इस तरह से लेना इसको। फिर यहाँ पर भी वो 512 लिख के उसके 200000 यहाँ पर लिखेंगे, परंतु उसके वर्गस्थान से वर्गस्थान को कंपेयर करो ना, तो ये तो आसान हो जाता है। यह नियम तीनों धाराओं में जानना। उससे तिगुणा जो घन धारा में जो है उससे तिगुणा, अभी आएगी बात, अभी 75 को पढ़ेंगे। अथ वर्गशलाकादीनाम अधिक्यादि भवन प्रकार माह, यानी वर्गशलाकाओं में जो क्या मिला वो उसमें कैसे बढ़ेंगे, अर्धच्छेद क्या होता है, दुगुना दुगुना होता है, वर्गशलाका कितने से बढ़ेगी भैया, नीचे के स्थान से ऊपर के स्थान में वर्गशाला का कितने से बढ़ेगी, दो गुना होगी कि 4 गुना होगी, वर्गशाला का किसको कहते हैं, इसकी वर्गशाला का एक है 4 की, 16 की 2 3 4 एक एक से बढ़ रही है ना, समझ में आती बात, अर्धशाला का अर्धछेद दुगुने होते हैं, वर्गशाला का एक एक से बढ़, यही बताएंगे भी। 75 वग्गसलारु वहिया सपदे परसम सवग्गसलमेत्तम दुगमाहदमद्धचिदी सम्मेतदुगे गुणे राशि वर्गशला रूपाधिका स्वपदे परस्मिन् समास्व वर्गशलामत्रम् द्विकमाह तमर्ध छेदा तन्मात्र द्विके गुणे राशि। देखो वर्गशलाकाओं की आधिक्यता एवं सादृश्यता का विधान गाथार्थ। स्वस्थान अपेक्षा वर्गशलाकाएं एक अधिक और परस्थान अपेक्षा अपने स्वस्थान सदृश ही होती है। वर्गशला का सेम है क्योंकि वर्गों को गिनना है। पहले स्थानों को गिना तो 8-64 गिना था, अब वर्गस्थानों को गिना तो हमने 64 पहले स्थान पर गिनना पड़ेगा। ये जो डिफरेंस है ना, ये इसमें से ख्याल बहुत लोगों को नहीं आता है, फिर कंफ्यूजन बहुत हो जाता है। 8 ये कोई वर्गशला का नहीं, उसकी वर्गशला का कोई नहीं होगी क्योंकि वो वर्ग है ही नहीं है। वर्ग है हमारा 64 की वर्गशला का एक होगी। यहाँ क्या कहते हैं कि स्वस्थान की अपेक्षा वर्गशला का एक अधिक होती है, यानी अपने स्वस्थान में 4, 16, 256 में उसकी वर्गशला का एक एक से बढ़ती है। अब वर्ग नीचे के द्विरूप घनधारा में एक नंबर के वर्गशला का किसकी है, 64 की है, तो वो वही रहती है, सदृश रहती है। वर्ग के स्थानों को गिनेंगे तो जिसका वो 4 का घन है 64, वो उसके पहला वर्ग स्थान है, तो सेम रहती है। ये कहना चाहते हैं यहाँ पर। यही फिर पढ़ती हूँ गाथा तक। स्वस्थान अपेक्षा वर्गशलाकाएं एक अधिक, किसमें, ऊपर ऊपर की राशि में, और परस्थान अपेक्षा अपने स्वस्थान सदृश ही होती है। ये वर्गों को केवल कंसीडर करना है। अपनी वर्गशला का प्रमाण दुआ रखकर, दुआ रखकर यानी दो संख्या लिखकर, यही शब्द रखा उन्होंने जो रुढ़ारी भाषा में, रुढ़ में ऐसे कहते थे, दुआ रखकर, दो अंक रखकर, नहीं तो फिर भगवान की दुआ यहाँ रख देना होता। अपनी वर्गशला का प्रमाण दुआ रखकर परस्पर गुणा करने से अर्धच्छेद, क्या कहना, हमने आपको यही बताया अर्धच्छेद के अर्धच्छेद वर्गशला का होती है। अब यहाँ दूसरी पद्धति से बताएं, जो वर्गशला का प्रमाण है उतनी बार दो संख्या लिखकर गुणा करो तो अर्धच्छेद राशि प्राप्त हो जाए।
वर्गशला को इतनी बार
लिखो, देखो अभी 256 की वर्गशला का कितनी है, 3 है, 3 बार 2 को लिखो गुणा करो कितने आए, 2 × 2 × 2 8, ये इसके अर्धच्छेद 8 हो गए। हमने उल्टा बोलता है, अर्धच्छेद का अर्धच्छेद निकालो उतनी वर्गशला का होती है। अब यहाँ ये बता रहे हैं जितनी वर्गशला का है उतने बार दो संख्या लिखकर आपस में गुणा करो तो अर्धच्छेद आएगी, उस राशि के अर्धच्छेद आ जाएंगे। केवल ज्ञान के अर्धच्छेद कितने हो गए, केवल ज्ञान के अर्धच्छेद कितने हो गए, कितने हो गए, केवल ज्ञान के अर्धच्छेद राशि कितनी है, मैंने पूछा।
उसके वर्गशला का
दो बार जो वर्गशला का है केवल ज्ञान की, दो संख्या उतनी बार लिखो
और गुणा करो।
हमने केवल फॉर्मूला लगाने को बोला आपको। यहाँ लिखा ना, अपनी वर्गशला का प्रमाण दो रखकर, दुआ रखकर परस्पर में गुणा करने से अर्धच्छेद तथा राशि के जितने अर्धच्छेद है उतने दुआ रखकर परस्पर गुणा करने से राशि की प्राप्ति होती है। अर्धच्छेद उसी को कहते हैं कि जितनी बार दो संख्या लिखकर आपस में गुणा करेंगे और राशि उत्पन्न होती है, उसी को, उसी का नाम है अर्धच्छेद। यानी राशि का जो अर्धच्छेद है उसका अर्धच्छेद है वो वर्गशला का। तो यहाँ अलग फ्रॉम उल्टे पद्धति से बताए, वर्गशाला का जितनी है उतनी बार दो संख्या लिख कर आपस गुणा करो तो अर्धच्छेद आएगा राशि का, और जो राशि के अर्धच्छेद है उतनी बार दो संख्या लिख कर आपस में गुणा करो तो राशि आएगी। हमारा पनट्टी के वर्गशाला का है चार, पनट्टी के तो चार बार दो लिख कर आपस में गुणा करो, करो कितना आया आपको नहीं पूछा है, जिसको पूछा जाए वही करेगा। दो दूनी चार, चार दूनी आठ, आठ दूनी सोलह, तो वर्गशाला का जो चार बताई तो उस राशि के, हमको राशि निकालनी है तो उस राशि के अर्धच्छेद कितने हो गए सोलह। अब वो राशि कितनी होगी तो सोलह बार दो लिखकर आपस में गुणा करो तो हमें पनट्टी मिल जाए। हाल में आई ना बात, हमको राशि मालूम है और उसकी वर्गशाला का मालूम करनी है तो राशि के अर्धच्छेद निकालो, पनट्टी के अर्धच्छेद सोलह है, उसके वर्गस्थान निकालना है वर्गशाला का तो कहते हो सोलह का अर्धच्छेद निकालो, चार आया वो हो गई पनट्टी की वर्गशाला। विशेषार्थ, वर्गस्थान से ऊपर के वर्गस्थान की वर्गशलाकाएं यानी 256 के वर्ग, जो वर्गस्थान तीसरा नंबर है उसके वर्गशाला का तीन है, उसके ऊपर के वर्गस्थान की वर्गशलाकाएं चार हो जाएगी ना। स्वस्थान में नियम से एक अधिक होती है, जैसे शलाकाएं ही कहने की पद्धति है उसको, शलाका हम सिंगल वचन करते हैं, यहाँ सर्वत्र उसको अनेक वचन में नियुक्त किया। तथा परस्थान में अपने सदृश ही होती है, देखो इसका अर्थ बता रहे हैं, परस्थान ने द्विरूप वर्ग धारा का जो स्थान है और यहाँ घन धारा का वर्ग स्थान है उसको लेना। द्विरूप वर्ग धारा का प्रथम स्थान दो का वर्ग चार है, दूसरा वर्ग स्थान सोलह है, तीसरा वर्ग स्थान 256 है। यहाँ प्रथम स्थान चार की वर्गशाला का एक, दूसरे स्थान की दो, तीसरे स्थान की तीन है, अर्थात एक एक की वृत्ति को लिए हुए है। द्विरूप वर्ग धारा में जैसे दो के वर्ग चार की एक वर्गशाला का और चार के वर्ग सोलह की दो वर्गशलाकाएं होती है, यह समझ में आई ना, दो से ए लगाया, एक जब वर्गशाला का थी तो सिंगल वचन बताया, जहां से दो संख्या शुरू हुई वर्गशाला का ए लिखा, क्यों अनेक शलाका हो गई उसकी, शलाका एक दो तीन चार, जहां शलाका ज्यादा हो गए तो बहुवचन हो गए। और वो टोडरमल जी साहब ने वहां राशि संख्या लिखी थी, राशि कहने से उसको सिंगल वचन यूज किया था, वर्गशाला का राशि बताया था तो इसलिए उसको एक वचन में नियुक्त किया उन्होंने। और यहाँ एक से ज्यादा है शलाका तो शलाकाएं कहें कि हाँ। उसी प्रकार द्विरूप घन धारा में आठ के घन 64 की एक वर्ग शलाका, ख्याल में आठ के आठ का वर्ग चाहिए, मैं भी ऐसे ही पढ़ गई, नहीं नहीं मैंने इसमें हमारे पुस्तक में गलत है, विशेषात का नीचे से तीसरी लाइन, द्विरूप घन धारा में आठ के वर्ग अश्विन में आपने सुधारा, आठ के वर्ग 64 की एक वर्गशाला का तथा 64 के वर्ग 4096 की दो वर्गशलाकाएं होती है। समझ में आई ना, केवल ज्ञान की कितनी होगी वर्गशाला का, हाँ भिन्न भिन्न होगी क्या,
नहीं नहीं
अभी ख्याल उनका प्रश्न था ना, उनका समाधान नहीं,
मेरे क्यों पूछा,
अच्छा किया पूछा, परंतु
मेरे क्यों पूछा, केवल ज्ञान में पर्याय में सद्गुण वृद्धि आनी होती है,
वो सद्गुण वृद्धि जैसे हम समझ रहे वैसा नहीं है, वो सूक्ष्म बात है कुछ, ख्याल में आई बात। अब कहते दो वर्गशाला का होती है द्विरूप घना 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 घन धारा, देखो ये किससे शुरू होता है, दो का घन आठ है और आठ का घन है 512, उसके वर्ग से शुरू हो जाएगी ये लाइन पूरी, तो 512 के वर्ग 262144 वो पहला स्थान है उसकी एक वर्गशाला का, और 262144 के वर्ग की दो वर्गशलाकाएं होती है, इस प्रकार परस्थान में वर्ग शलाकाएं समान होती है। ख्याल में आई बात? वो सम स्थान की बात हमने एक से बढ़कर बताई थी, क्योंकि आठ को प्रथम स्थान कहने की पद्धति पड़ी है। पर वर्ग शलाकाओं की अपेक्षा अगर हम कहेंगे तो उसी स्थान को है वो। देखो वर्ग शलाका ने द्विरूप वर्ग धारा में चार की वर्ग शलाका कितनी है? एक। द्विरूप घन धारा में पहला वर्ग स्थान कौन सा है?
ये
64। तो उसकी भी चार की भी वर्ग शलाका एक है, 64 की भी एक है।
जो फर्स्ट है वो उसका सबसे वर्ग शलाका सेम है।
सेम यानी वर्ग हम आठ से वर्ग स्थान 64 से शुरू करते हैं। वो धारा का पहला वर्ग स्थान कौन सा है? तो 64। उसको हम वर्गशाला का एक कहेंगे। नेक्स्ट जो स्थान है 4096, उसकी वर्गशाला का है दो है।
तो द्विरूप घन धारा में वर्गशाला का और अर्धच्छेद का वो
वही होगा,
क्या होगा?
वही होगा।
नहीं, 64 का अर्धच्छेद है 4, दो कितनी बार लिखेंगे तो 8 का, तो अर्धच्छेद 8 होगा।
हमने क्या देखा था? चार का अर्धच्छेद है दो, तो 64 उसका घन है, तो उसके अर्धच्छेद कितने हो गए?
24। नहीं नहीं, दो का जब 6
हो गए, दो 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 6 हो गए ना। अभी क्या प्रश्न है आपका?
अभी 6 से जिसकी वर्ग कला का एक है तो उसका कुछ संबंध नहीं, विरूप घन धारा में जो अर्धच्छेद है वो उसमें उसकी वर्ग शलाका का कोई सूत्र भी नहीं। जैसे यहाँ पे ये द्विरूप वर्ग धारा में हम लोग को किस तरह से बताया
अर्धच्छेद के अर्धच्छेद,
अर्धच्छेद के अर्धच्छेद, तो वहाँ पे भी अर्धच्छेद के अर्धच्छेद का मान शलाका
अर्धच्छेद अर्धच्छेद कैसे निकालेंगे? उसके इसके अर्धच्छेद कितने हो गए अभी?
6
हो गए। उसके आगे वो जो ये अर्धच्छेद 12 हो जाएंगे, फिर 24 इस तरह से बढ़ेंगे वो।
पर वहाँ पे अर्धच्छेद और शलाका का कोई सूत्र से कोई कैलकुलेशन नहीं हो सकता?
वो अभी तक तो कुछ बता नहीं है। क्योंकि इसमें तो सब
अर्धच्छेद
अर्धच्छेद के अर्धच्छेद निकालो।
6 का अर्धच्छेद कैसे निकालोगे? 6 दो बार
6 के अर्धच्छेद कैसे निकालेंगे? और नंबर आएंगे ना बीच में, 2 × 2 × 2 8 के अर्धच्छेद 3 हो सकते हैं। 6 के अर्धच्छेद अधूरी राशि अपूर्णांक में आएगा, वो नहीं लेना है। इसको वो द्विरूप वर्ग धारा में ले लेना है।
वो जो नियम है वो खाली द्विरूप वर्ग धारा में।
देखो यहाँ क्या कहते हैं, परस्थान में वर्गशलाकाएं समान होती है, यहाँ तक पढ़ा था ना हमने, विशेषार्थ का एक पैराग्राफ हुआ। अर्धच्छेद निकालने का नियम, जितनी वर्गशलाकाएं हैं उतनी बार दो लिखकर परस्पर में गुणा करने से उसी राशि के अर्धच्छेद प्राप्त हो जाते हैं। तीनों धारों के लिए है।
ये नियम तो द्विरूप वर्ग धारा के लिए है, द्विरूप घन धारा
उसके लिए नहीं है। हाँ, क्योंकि उतनी बार लिखेंगे तो सबका समान हो जाएगा अर्धच्छेद। ओनली द्विरूप वर्ग धारा के लिए है। देखो ये अर्धच्छेद निकालने का नियम, जितनी वर्ग शलाकाएं हैं उतनी बार दो लिखकर परस्पर में गुणा करने से उसी राशि के अर्धच्छेद प्राप्त हो जाते हैं। जैसे 256 की 3 वर्ग शलाका है, अतः 2 को 3 बार आपस में गुणा करने से 8 अर्धच्छेद प्राप्त हुए। 256 के 8 अर्धच्छेद होते हैं। यह नियम केवल आपके लिए लिख दिया द्विरूप वर्ग धारा के, ये जो अर्धच्छेद अर्धच्छेद राशि कैसे निकालना तो उसको उन्होंने बताया, वर्गशलाका को उतनी बार दो लिखकर आपस में गुणा करो, नहीं तो यही नियम कैसे सब जगह होगा, क्योंकि हर एक की वर्गशाला का तो सेम आ जाएगी और हर एक के अर्धच्छेद अलग अलग है। ऐसा कर सकते घनधारा में वो वर्गशलाका को तीन गुना करके फिर उसके वर्गशलाका को तीन गुना करके उतनी बार फिर दो लिखना पड़ेगा या उसके अर्धच्छेदों को तिगुना करो ना, अर्धच्छेदों
में दो गुना करना पड़ेगा, यहाँ पे
तीन गुना करना। यानी देखो द्विरूप वर्गधारा की जो वर्गशाला कोई भी अभी 256 की वर्गशाला का तीन, तो तीन बार दो लिखते आपस में गुणा कर दे तो आठ आएगा, तो उसको तीन गुणा करना पड़ेगा नीचे के, उसको तीन गुणा करना पड़ेगा घनधारा के अर्धच्छेद उस स्थान के अर्धच्छेद। देखो राशि निकालने का नियम, राशि के जितने अर्धच्छेद होते हैं उतनी बार दो लिखकर परस्पर गुणा करने से विवक्षित राशि प्राप्त होती है। अब ये नियम तो तीनों धाराओं के लिए होगा क्योंकि अर्धच्छेद तो किसी भी संख्या के होते हैं तो वही हाँ यहाँ वर्गशाला का से कोई संबंध नहीं है। जैसे 256 के आठ अर्धच्छेद है अतः आठ बार दो को लिखकर आपस में गुणा करने से 256 विवक्षित राशि प्राप्त हो गई, यह नियम तीनों धाराओं के लिए है। अब हम आए हैं 69 पेज पर 69। अथ वर्गशलाकार्धच्छेदयोः स्वरूपम आह, यानी वर्गशलाका और अर्धच्छेद क्या है उसका स्वरूप अब जाके बताएंगे। पहले तो उसके बारे में नियम बता चुके हैं, अभी वो कहना किसको वो बात अब यहाँ कहें। वग्गिदवारावग्ग सलागारासिस्सवद्धच्छेदस्स अद्दिदवारावा खलु दलवाराहोन्ति अद्धच्छिदी, वर्गितवारावर्ग शलाकाराशे अर्धच्छेदस्य अर्धितवारा वा खलु दलवारा भवन्ति अर्धच्छेदाः। ये वर्गशलाका और अर्धच्छेद का स्वरूप बता रहे हैं। राशि के वर्गित वार, वर्गित वार यानी कितने बार वर्ग किया उसको वर्गित वार कहा। राशि के वर्गित वार अर्थात जितने बार वर्ग करने से राशि उत्पन्न होती है उतने बार वर्गशलाकाएं कहलाती हैं। उसको वर्गशलाका राशि कहो या वर्गशलाकाएं कहेंगे, अथवा अर्धच्छेद के अर्धच्छेद वर्गशलाकाएं कहलाती हैं। ये नियम आए ना अर्धच्छेद के अर्धच्छेद, ये मैंने पहले आपको बताया था क्योंकि मुझे मालूम था। राशि के जितने बार अर्ध करते करते एक अंक रह जाए वे वार अर्धच्छेद कहलाते हैं। जैसे हमारे पास आठ है, एक बार दो से भाग दिया चार आए, दूसरी बार भाग दिया दो आए, तीसरी बार भाग दिया एक आया, तीन बार किया ना हमने, इसे कहेंगे आठ के अर्धच्छेद कितने हैं तो तीन। नहीं आठ के अर्धच्छेद तीन बार दो गुना करने से आता है ना, हमने कितनी बार भाग देना चाहिए ये बताया। हाँ 76 पेज हाँ इसको कल ही देखना पड़ेगा। एक गाथा तो केवल पढ़ लेते हैं। राशि के वर्गितवार अर्थात जितने बार वर्ग करने से राशि उत्पन्न होती है उतने बार वर्गशलाकाएं कहलाती है, अथवा अर्धच्छेद के अर्धच्छेद वर्गशलाकाएं कहलाती है। राशि की जितनी बार अर्ध करते करते एक अंक रह जाए, जितनी बार करना है ना उसको भाग देते जाना, एक बार भाग दिया, दूसरी बार, तीसरी बार, लास्ट में एक होना चाहिए, वे वार अर्धच्छेद कहलाते हैं। अब यही रुकेंगे हम। जावानी के ज्ञान से तुझे लोकालो सोवाणी मस्तकनम सदा देत हो। मैं Mm-hmm.